हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी आलोचना के प्रथम आधार स्तंभ हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को परंपरा से हटकर एक नवीन सांस्कृतिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हिंदी आलोचना की उस मूल्य दृष्टि को आगे बढ़ाया जिसका सूत्रपात भारतेंदु युग में श्री बालकृष्ण भट्ट ने किया था। उनकी मूल्य दृष्टि एतादृशत्व के विरुद्ध और भविष्योन्मुखी थी। सन 1920 में कविता और भविष्य शीर्षक अपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध में उन्होंने कहा था, इनोटेड कामा, भविष्य कवि का लक्षण इधर ही होगा। अभी तक वह मिट्टी में सने हुए किसानों और कारखानों से निकले हुए मैले मजदूर को अपने काव्यों का नायक बनाना नहीं चाहता था। वह राज स्तुति, वीरगाथा अथवा प्रकृति वर्णन में ही लीन रहना चाहता था, परंतु अब वह क्षुद्रों की भी महत्ता देखेगा और तभी जगत का रहस्य सबको विदित होगा। जगत का रहस्य क्या है? इस पर एक ने कहा है कि असाधारणता में यह रहस्य नहीं है, जो साधारण है वही रहस्य है, वही अनंत सौंदर्य से युक्त है। इसी सौंदर्य को स्पष्ट कर देना भविष्य कवियों का काम होगा। इनोटेड कामा वन। उपर्युक्त कथन पर ध्यान दीजिए। आचार्य द्विवेदी काव्य में धूल भरे किसान और मैले मजदूर को प्रतिष्ठित करने की हिमायत कर रहे हैं। वे असाधारण के स्थान पर साधारण को प्रतिष्ठित करने की बात कहते हैं और उसी के अनंत सौंदर्य की संभावना तलाश करते हैं। इसी निबंध में उन्होंने कला के पूर्णता के लिए ज्ञान और भाव अथवा मस्तिष्क और हृदय के संतुलन पर बल दिया है। वे कहते हैं, सच तो यह है कि ज्ञान को ऊर्जिता अवस्था में ही कला का सबसे अच्छा विकास होता है। हृदय के साथ मस्तिष्क की पुष्टि होने पर भावों की उत्तम अभिव्यक्ति होती है। हम कह सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी के उपर्युक्त विचारों में मुक्तबोध के ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान का बीज निहित है। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि न तो आचार्य द्विवेदी द्वारा प्रतिष्ठित काव्य सिद्धांतों पर गंभीरता से विचार किया गया, न उनकी व्यवहारिक समीक्षा में निहित मूल्य दृष्टि का अनुसंधान। एक बार भाषा के सुधार और परिष्कार पक्ष से जुड़ जाने के बाद उनकी यही छवि थोड़े बहुत हेर फेर के साथ बार बार प्रतिष्ठित की जाती रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पहली बार आचार्य द्विवेदी के प्रदेय का पुनर्मूल्यांकन किया, उनकी नई मूर्ति उकेरी और उन्हें हिंदी नवजागरण के पुरोधा के रूप में प्रतिष्ठित किया, किंतु यह तो विगत इसी शती के 8वें दशक में संभव हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक आलोचक के रूप में पहला मूल्यांकन आचार्य शुक्ल ने किया। उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखाने वाली पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, किंतु एक समर्थ आलोचक के रूप में द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को उन्होंने महत्व नहीं दिया। आचार्य द्विवेदी की विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषत चरित्र चर्चा, कालिदास की निरंकुशता आदि का उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा, यूनाइटेड कामा, जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ संख्या 528। शुक्ल जी ने द्विवेदी जी द्वारा दी गई पुस्तक समीक्षा को अवश्य महत्व दिया, किंतु यह महत्व भाषा परिष्कार की दृष्टि से दिया गया, विषय वस्तु के मूल्यांकन या विवेचन की दृष्टि से नहीं। शुक्ल जी ने लिखा, इनोटेड कामा, यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। इनोटेड कामा, अर्थात आचार्य द्विवेदी खरे आलोचक हैं, लेकिन उनका महत्व भाषा समीक्षक के रूप में ही मान्य होना चाहिए। आचार्य नंद लुलारे वाजपेयी ने द्विवेदी को नवयुग का प्रवर्तक तो स्वीकार किया, किंतु उनके आलोचक का मूल्यांकन वे भी नहीं कर सके। उन्होंने लिखा, इनोटेड कामा, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व मूलतः सुधारक और प्रवर्तक व्यक्तित्व है। उन्होंने समस्त प्राचीन को ताक पर रखकर नवीन अभ्यास और नए अनुभवों का रास्ता पकड़ा। हिंदी की किसी भी प्राचीन परंपरा के वे कायल न थे। संस्कृति से उनका प्रेम अवश्य था, पर वह भी उतना ही जितना नवीन हिंदी को स्वरूप देने के लिए आवश्यक था। इसीलिए द्विवेदी जी की शैली में संपूर्णतः नवीनता के दर्शन होते हैं। वाजपेयी जी की दृष्टि में द्विवेदी जी सुधारक हैं, प्रवर्तक हैं। नवीनता को पूर्णता और समग्रता स्वीकार करते हैं, किंतु अंततः यह सब उनकी शैली की नवीनता में आकर सीमित हो जाता है। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास के लेखक भगत स्वरूप मिश्र बंधुओं को समीक्षा पद्धति का विश्लेषक विश्लेषण तो लगभग 20 पृष्ठों में किया, किंतु आचार्य द्विवेदी की समीक्षा के लिए अलग शीर्षक देकर विचार करना भी आवश्यक नहीं समझा। द्विवेदी काल में आलोचना का स्वरूप शीर्षक के अंतर्गत उनके समीक्षा का विवेचन करते हुए उन्होंने जो निष्कर्ष रूप में कहा, इन्होंने कामा, उन्होंने कवियों और जनता दोनों में ही सुरुचि जागृत करने का प्रयास किया और वे इस कार्य में पर्याप्त रूप से सफल भी हुए। द्विवेदी जी जैसे कठोर निरीक्षक के अभाव में रीतिकाल का गंदा नाला अब तक बहकर सारे साहित्य को अप्लावित कर देता। इस प्रकार द्विवेदी जी की आलोचना की मूल प्रेरणा सुरुचि और सत्साहित्य का निर्माण है। इन्वर्टेड कामा पर वस्तुतः रीति काव्य का विरोध तो भारतेंदु युग में ही होने लगा था। बाल कृष्ण भट्ट और उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त श्रृंगारिक रीति कविता के विरोधी थे। प्रताप नारायण मिश्र ने भी देश और समाज हित को केंद्र में रखकर कृतियों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया था। आचार्य द्विवेदी उसी परंपरा का विकास कर रहे थे। आचार्य द्विवेदी का महत्व श्रृंगार रीत श्रृंगार विरोधी आचार्य के रूप में नहीं है, उनका महत्व उस वैज्ञानिक जीवन दृष्टि के स्वीकार के कारण है जिसके आधार पर रचित हिंदी साहित्य नवजागरण का अग्रदूत बनकर क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा निर्दिष्ट करता है। आचार्य द्विवेदी के साहित्य पर गंभीर शोध कार्य करने वाले डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उनके व्यक्तित्व को तप के रूप में स्वीकार किया, किंतु साहित्य की श्रेष्ठता का निर्णय करने वाली उनकी सामाजिक मूल्य दृष्टि का उद्घाटन उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने लिखा, इन्होंने कामा, आलोचक द्विवेदी का सच्चा स्वरूप उनकी कृतियों के कतिपय संग्रहों में नहीं है, वह उस युग के साहित्य के एक साथ एक हो गया है। उन्होंने आलोचना के तप के स्वरूप में स्वीकार उनकी संहारात्मक समीक्षाओं ने लेखक को सावधान करके भाषा को सुव्यवस्थित करके हिंदी साहित्य के दृश्य और इयत्ता को उत्पन्न करने की भूमिका प्रस्तुत की, साहित्य जगत में जागृति उत्पन्न की, इसके फलस्वरूप आगे चलकर माननीय ठोस ग्रंथों की रचना हो सकी। इनोटेड काम बंद। डॉक्टर सिंह ने भी आचार्य द्विवेदी के युग विधायक व्यक्तित्व को भाषा व्यवस्थापक और साहित्य जगत में जागृति उत्पन्न करने वाले आंदोलनकर्ता तक ही सीमित कर दिया। यदि वे यह सोच सके होते कि न जागृति के मूल में नवीन सांस्कृतिक सामाजिक चेतना कार्य कर रही थी जिसका आधार नवीन वैज्ञानिक चिंतन था, तो वे उनका मूल्यांकन अधिक प्रासंगिक और मौलिक होता। आचार्य द्विवेदी के आलोचक व्यक्तित्व की पहली बार डॉक्टर रामलीला शर्मा ने हिंदी नवजागरण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उभार कर सामने रखा। उन्होंने आचार्य द्विवेदी के चिंतन और लेखन के साक्ष्य पर यह प्रमाणित किया कि हिंदी नवजागरण की अपनी विशेषताएं हैं और भी विशेषताएं बंगाल और गुजरात के नवजागरण से भिन्न हैं। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि छायावादी साहित्य द्विवेदी युग के प्रति विद्रोह का साहित्य नहीं है, वरन वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है। उन्होंने लिखा, इन्होंने कामा, द्विवेदी जी की युगांतकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं का विवेचन गहराई से किया। इन्होंने काम बंद। उनकी दृष्टि में द्विवेदी जी अपने समय में सबसे बड़े बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक विचार पद्धति के समर्थक थे। डॉक्टर शर्मा के मूल्यांकन के बाद द्विवेदी जी की एक नई प्रतिभा हिंदी जगत में उभर कर सामने आई थी, लेकिन उनके महत्व और मूल्य के प्रति प्रश्न चिन्ह अब भी लग रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी गद्य के मानकीकरण का प्रयत्न अवश्य किया, किंतु व्याकरण के नियमों को इतना महत्व दिया कि सृजनात्मक गद्य की संभावनाएं समाप्त होने लगी। यह भी कहा जाता है कि आचार्य द्विवेदी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर का हिंदी साहित्य अधिक सृजनात्मक है। संवेदना के स्तर पर आचार्य द्विवेदी का लेखन मर्म स्पर्शी नहीं है। स्थायित्व की दृष्टि से उनकी रचनाओं का महत्व नगण्य है। वहां यह स्मरणीय है कि आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी जी की समीक्षा को गंभीर और स्थायी महत्व की न मानते हुए भी उनके उपकार को अविस्मरणीय माना है, और यह भी कहा है कि इन्वर्टेड कामा गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। इन्वर्टेड कामा बंद। शुक्ल जी ने काव्य के क्षेत्र में भी द्विवेदी जी के प्रभाव को महत्व दिया है। वे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा, बात यह है कि उसी समय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर ही बहुत व्यापक पड़ा। इन्वर्टेड कामा बंद। यद्यपि शुक्ल जी ने सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता के विकास में द्विवेदी जी के प्रभाव को बाधक माना है, किंतु प्रभाव की व्यापकता पर वे बल देते हैं। प्रश्न यह है कि जिसका गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर व्यापक प्रभाव है, उसके सृजनात्मक और विचारात्मक व्यक्तित्व को व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं। आचार्य द्विवेदी के समग्र लेखन के भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि व्याप्त है। इसका सम्यक उद्घाटन करने के लिए हमें उन पूर्ववर्ती कड़ियों को देखना होगा जिनको संगठित करके द्विवेदी ने नई शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले बाबू हरिश्चंद्र आलोचना का सूत्रपात कर चुके थे। उन्होंने नाटक शीर्षक निबंध में शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों के देश कालानुरूप परिवर्तित होते रहने की बात बलपूर्वक कही है। उन्होंने नाटकों के उद्देश्य पर विचार करते हुए समाज संस्कार और देश वत्सलता को महत्व दिया था। इस प्रकार भारतेंदु ने आलोचना के क्षेत्र में दो मूलभूत आधारों की स्थापना की। प्रथम तो यह कि शास्त्री सिद्धांत परिवर्तनीय है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। दूसरी यह कि काव्य का मूल्यांकन सामाजिक चेतना को भी दृष्टि में रखकर करना चाहिए। शास्त्रीय मर्यादा से युक्त होते हुए भी काव्यकृति तभी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है जब उसमें समाज संस्कार की चेतना और देशभक्ति की भावना हो। आगे चलकर बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र इन तीनों आलोचकों ने साहित्य के जीवन के साथ संपृक्त करके देखा। साहित्य में संयम, मर्यादा और शुद्धाचरण की प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्राचीन मान्यताओं के युगानुकूल परिवर्तन की बात कही नहीं, कुछ मान्यताओं को सर्वथा त्याग पर भी बल दिया। समाचार समाज संस्कार को सर्वोपरि महत्व दिया। इमरट कामा, काव्य में भव्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। इनोटेड कामाबंद, इस सूत्र को सदैव सामने रखा और इसी आधार पर कृतियों की श्रेष्ठता पर हीनता प्रमाणित की। उन्होंने काव्य में शुद्धेश्यता के महत्व को स्वीकार करते हुए उसमें नैतिक, उपयोगी, प्रभावपूर्ण, नवीन, सरस विषयों के समावेश पर बल दिया। प्राचीन परिपाटी के शास्त्रीय ग्रंथों, अलंकार, रीति और नायिका भेद संबंधी के प्रकाशन के प्रति उनमें एक प्रकार की क्षोभपूर्ण विरक्ति भावना थी। वे कवि या लेखक के मूल मंतव्य का मूल्यांकन करना आवश्यक समझते थे। अवान्तर बातों को लेकर बाल की खाल निकालना उन्हें अनावश्यक लगता था। किसी भी कवि की आलोचना करते समय वे कवि के आविर्भावकालीन परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक मानते थे। तात्पर्य यह है कि आलोचक द्विवेदी जी के मूल्यांकन के आधार तत्व व्यापक हैं। प्राचीनता से उचित का ग्रहण और अनुचित का त्याग, नवीनता से विवेकपूर्ण स्वीकृति, शास्त्र के स्थितिशील तत्वों की उपेक्षा समाज संस्कार को महत्व, उपयोगिता, स्वदेश्यता, स्वदायश्रयता, स्वाभाविकता, सरसता और प्रभावोत्पत्ति दन की क्षमता को काव्य के आवश्यक तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित करने का आग्रह, यदि वे मूलभूत मान्यताएं हैं जिन पर द्विवेदी जी की आलोचना आधारित है, इसी दृष्टि से अपने भारतेंदु युग के वीर लेखकों मिश्र बंधुओं की हिंदी नवरत्न तथा मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती की आलोचना की। हिंदी आलोचना के विकास में द्विवेदी जी की सामाजिक चेतना की तुलना 19वीं सदी के पाश्चात्य प्रगतिशील विचारकों से करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक चेतना की तुलना 19वीं सदी के पाश्चात्य प्रगतिशील प्रचारकों की सामाजिक चेतना से भी की जाए तो देखा जाएगा कि 20वीं सदी का आरंभ होते होते हिंदी बुद्धिजीवियों की सामाजिक चेतना तेजी से बदल रही है और पूर्ववर्ती पाश्चात्य विचारकों की चेतना के समानांतर बढ़ रही है। यही कारण है कि इतिहास और समाजशास्त्र के विवेचन में द्विवेदी जी की विचारधारा इतनी आधुनिक और वैज्ञानिक दिखाई देती है और दार्शनिक विषयों का विवेचन यह नवीन बुद्धिवादी तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। यह स्थिति दर्शन और इतिहास के क्षेत्र में भी नहीं है, इसके साथ साहित्य के क्षेत्र में भी वही चेतना सक्रिय है। इनोटर कामबंद, हम आरंभ में ही देख चुके हैं कि आचार्य द्विवेदी ने भविष्य की कविता में साधारण की प्रतिष्ठा और उसी पे अनंत सौंदर्य की संभावना की ओर संकेत दिया था। साथ ही उन्होंने कला के पूर्णता के लिए मस्तिष्क और हृदय के संतुलन पर बल दिया था। डॉक्टर शर्मा ने आचार्य द्विवेदी की इस नवीन बुद्धि चेतनावाद की बुद्धिवादी चेतना की ओर संकेत किया है। इस चेतना में हृदय का विसर्जन नहीं, उस पर विवेक का नियंत्रण मान्य है। सैद्धांतिक दृष्टि से आचार्य द्विवेदी रसवादी आलोचक माने जाएंगे। आपका यह रसवाद लोकहित की भावनाओं से मर्यादित है। रसवाद की यही परंपरा आचार्य शुक्ल में गहराई एवं गंभीरता के चरम सीमा पर पहुंच गई है। कविता की परिभाषा बताते हुए द्विवेदी जी ने संस्कृत के आचार्यों की परिभाषाओं का सारा रूप इस प्रकार पद्यबद्ध किया है। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई अलौकिकानंद विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। सुरम्यता की कमनीय कांति है अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, शरीरे तेरा सब शब्द मात्र है, नितांत निष्कर्ष ही यही कहीं। रसज्ञ रंजन में भी एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, नोटेड कामा, कवियों का यह काम है कि ये जिस पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं उसका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द रूप स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस वालों के हृदय में जागृत हो जाता है। इनोटेड कामा बंद। अपने अन्य गद्य निबंधों कवि बनने के सापेक्ष साधन कवि और कवि कविता में भी अपने प्रकारांतर से उपयुक्त रसवाद का ही समर्थन किया है। संस्कृत कवियों की व्यवहारिक समीक्षा करते समय भी आपने प्राय सहृदयता की मांग की है। कालिदास की प्रशंसा करते हुए आपने उनके भावोद्बोधन बोधन की शक्ति सौंदर्य एवं रस चेतना प्रसंगानुकूलता शब्द योजना तथा वर्ण विषय की मूर्ति खड़ी कर देने की क्षमता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। रस दृष्टि को विशेष महत्व देने के कारण ही आपने अलंकार शास्त्र के जटिल नियमों को शिथिल करने की बात कही है। आप पिंगला शास्त्र के नियमों को अनिवार्य नहीं मानते थे। आपकी दृष्टि में पद के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियां हैं, उनमें जकड़ जाने से कवियों के अपनी स्वाभाविक उड़ान से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र के प्राचीन जटिल नियमों को भी नाट्य रचना के लिए आप अनिवार्य नहीं मानते थे। अपने नाट्यशास्त्र में आप कहते हैं, यूनाइटेड कामा, हमारा यह मत है कि हिंदी में नाटक लिखने वालों के लिए इन सब भेदों का विचार करना आवश्यक नहीं। इससे यह अर्थ निकालना चाहिए कि नाट्यशास्त्र के आचार्यों ने हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सब जटिल नियम उस समय के लिए थे जिस समय भरत धनंजय आदि ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। इनवर्ट काम बंद। अपने सुधार दृष्टिकोण के कारण ही द्विवेदी जी ने पाश्चात्य समीक्षा प्रणाली से भी आवश्यक एवं उपयोगी गुणों को अपनाया और अपने व्यक्तित्व को समृद्ध किया। इसमें संदेह नहीं कि द्विवेदी जी ने कुछ प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों और लेखकों की कृतियों को ध्यान से पढ़ा था। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा को जो पुस्तकें दान में दी हैं उनमें 1198 पुस्तकें अंग्रेजी की हैं। उन्होंने बेकन विचार रत्नावली, शिक्षा और स्वाधीनता के नाम से क्रमशः बेकन के निबंधों, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन और जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में उन पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, किंतु इस प्रभाव को उन्होंने पूरी तरह पचाकर अपने व्यक्तित्व का अंग बना लिया है। उनके अभ्युदय को से बहुत पहले ही बंगला और मराठी साहित्य नवचेतना से प्रभावित हो चुका था। द्विवेदी जी ने संस्कृत अंग्रेजी के साथ ही बंगला मराठी और गुजराती साहित्य का भी अध्ययन किया था। इनके संश्लेषण से उनकी एक स्वस्थ वैज्ञानिक दृष्टि बन चुकी थी। अंग्रेज कवियों में सबसे अधिक वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा के अनुसार वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में दिए गए काव्य सिद्धांत के अनुरूप ही उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा के एक होने, छोटे विषयों पर काव्य रचना करने तथा काव्य को अनुभूति प्रधान बनाने की बात कही। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी की कई साहित्यिक मान्यताओं पर अंग्रेजी के कवियों और लेखकों का प्रभाव है, किंतु ध्यान रखना होगा कि आचार्य द्विवेदी का निजी व्यक्तित्व इतना सबल है, उनकी राष्ट्रनिष्ठा इतनी प्रबल है और उनका विवेक इतना जागृत है कि वे प्रभाव चाहे जहां से ग्रहण करें अंततः उसे अपने व्यक्तित्व में संश्लिष्ट कर लेते हैं। वे यह नहीं मानते कि किसी पूर्ववर्ती विचारकों के श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात करने से मौलिकता खंडित होती है। अपने मौलिकता का मूल्य शीर्षक निबंध में वे कहते हैं, यूनाइटेड कामा, दूसरों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से लाभ उठाने की परिपाटी तो परंपरा से चली आ रही है और पूर्वजों के इस ऋण को से बचने का उपाय भी तो नहीं। सभी लेखक सभी ग्रंथकार अपने पूर्ववर्ती पंडितों के ज्ञान से अपने ज्ञान वृद्धि करते चले आ रहे हैं। यह क्रम आज का नहीं बहुत पुराना है और सतत जारी रहेगा। आचार्य द्विवेदी के लिए विचार और विद्वान कहीं क्यों, यदि वे हमसे पहले उत्पन्न होकर कुछ नया और विशिष्ट दे गए हैं तो वे भी हमारे पूर्वज हैं। उनके ज्ञान से अपनी ज्ञान राशि को समृद्ध करना हमारा धर्म है। किसी से प्रभावित होकर उसका अनुकरण करना और बात है। किसी के ज्ञान को आत्मसात करके अपनी ज्ञान राशि को समृद्ध करना, अपने व्यक्तित्व को उन्नयन करना दूसरी बात है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में प्रभाव ग्रहण की परंपरा आगे भी चलती रही है। आचार्य शुक्ल तक ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों वैज्ञानिकों और आलोचकों से प्रभाव ग्रहण किया है, उनसे उत्तेजना पाई है, किंतु उनकी यहाँ एक टकराहट है, सहज स्वीकार नहीं। आचार्य शुक्ल पाश्चात्य विचारकों के व्यक्तित्व से आक्रांत नहीं होते, कहीं उनकी सीमाओं का उल्लेख करके, कहीं अपने समर्थन से उनको उद्धृत करके और कहीं स्वस्थ साहित्य के चिंतन सृजन में उनकी अपार्थता का बोध कराकर आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी चुनकर उनकी उपयोगी बात ले आते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। आचार्य द्विवेदी संस्कृत का संस्कार लेकर हिंदी में आए थे। उनके समय तक आलोचना की कोई मान्य पद्धति भी विकसित नहीं हुई थी। तुलनात्मक आलोचना जिन प्राचीन सिद्धांतों को आधार बनाकर लिखी जा रही थी, वे सिद्धांत आचार्य द्विवेदी के मान्य नहीं थे। भारतेंदु काल से प्रारंभ होने वाली कृतियों की श्रेष्ठता को समाज और देश की कसौटी पर कसने वाली आलोचना का भी अभी तक कोई तर्क पुष्ट व्यवस्थित रूप नहीं ढला था। ऐसी स्थिति में द्विवेदी जी का संस्कृत आचार्यों की पद्धति को आधार बनाना स्वाभाविक था। संस्कृत में आलोचना के मुख्यतः छह रूप प्रचलित थे: आचार्य पद्धति, टीका पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, सूक्ति पद्धति, खंडन पद्धति और लोचन पद्धति। आधुनिक दृष्टि से देखने पर यह पद्धतियां आलोचना नहीं कही जा सकती। आचार्य द्विवेदी ने भी संस्कृत पंडितों की परंपरा का पूर्णतः अनुसरण करते हुए इनका प्रयोग नहीं किया है। वे तो आलोचक के न्यायाधीश के रूप में देखते थे, जो सभी दृष्टियों से विचार करके अपना निर्णय सुनाता है, किंतु उनके अवचेतन में इन पद्धतियों के संस्कार अवश्य थे। कालिदास की निरंकुशता दिखाते समय आपने अपने टीकाकारों मल्लीनाथ, हिमाद्री, सुमति विजयवल्लभ और दिनकर मिश्र आदि का उल्लेख किया है और बताया है कि इन लोगों के दोषों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दोष दर्शन की परंपरा उन्हें इन्हीं पंडितों से प्राप्त हुई थी। इसी कारण द्विवेदी जी की समीक्षा में उपर्युक्त सभी पद्धतियों का प्रभाव किया जा सकता है। उपर्युक्त पद्धतियों में आचार्य पद्धति को प्रकारांतर से सैद्धांतिक आलोचना पद्धति भी कह सकते हैं। द्विवेदी जी ने नाट्यशास्त्र और रसज्ञ रंजन की रचना इसी पद्धति से की है। उनकी व्यावहारिक आलोचना में भी इतस्तत शास्त्र सिद्धांत बिखरे मिल जाते हैं। द्विवेदी जी ने टीका पद्धति का प्रयोग कम किया है। कालिदास की कविता में चित्र बनाने योग्य स्थान, कालिदास की वैवाहिकी कविता शीर्षक लिखी गई समीक्षाओं को इस पद्धति के अंतर्गत रख सकते हैं। सरस्वती में समय समय पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षाएं भी इसी पद्धति के अंतर्गत आती है। सुविधा की दृष्टि से इस पद्धति को परिचयात्मक आलोचना पद्धति भी कह सकते हैं, किंतु सामान्य पुस्तक समीक्षाओं और संस्कृत कवियों की रचनाओं के प्रसंग विशेष को सामने रखकर लिखी गई समीक्षाओं में बड़ा अंतर है। पुस्तक समीक्षाओं में द्विवेदी जी ने मुख्यतः प्रकाशन का उद्देश्य, पुस्तक की प्रामाणिकता, इसमें लक्षित होने वाली भाषा और व्याकरण की त्रुटियां और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता पर ही प्रकाश डाला है, किंतु संस्कृत कवियों के महाकाव्यों के चुने हुए प्रसंगों की समीक्षा करते हुए वे उसमें पूरा रस लेते हैं और कविता के बारीकियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। ऐसे अवसरों पर उनकी शैली प्रभावाभिव्यंजक हो जाती है। उदाहरण के लिए कालिदास की वैवाहिकी कविता निबंध में कालिदास के निम्नांकित श्लोक एवं वादिनी देवर्षि पार्श्वेतिर्यो दोमुखी लीला कमला पत्रणी गणयास मास पार्वती उद्धृत करने के बाद वे कहते हैं, कैसी अद्भुत कविता है, कैसा अद्भुत भाव है। मन में उत्पन्न वे आनंदातिशय को छिपाने की कोशिश करके भी पार्वती ने कमल दलों को गिन कर इसे स्पष्ट कर दिया। उस समय जो विकास पार्वती के हृदय में उद्धृत हुए थे, उनको शुद्ध बतलाने की यदि हजार कोशिश की जाती तो भी उस शब्द चित्र का यह रसानुभव न होता जो इस निर्थक कमल गणन की उक्ति से हुआ है। इन्होंने कहा बंद वस्तुतः आचार्य द्विवेदी को जिस रस राशि रंजित सुरम में कविता की तलाश थी, वह संस्कृत के सिद्ध कवियों की कविता ही थी। वे चाहते थे कि खड़ी बोली में भी वैसे ही सरस और रम्य कविताएं लिखी जाए। यह आवश्यक है कि युग की विशेषता को ध्यान में रखकर वे सरसता के साथ कविता में स्वदेश प्रेम, लोक कल्याण और पूर्व पुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना भी देखना चाहते थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने भारत भारती की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। कहना न होगा कि वह परिचयात्मक समीक्षा के आगे चलकर व्याख्यात्मक पद्धति के रूप में विकसित हुई। बेहतर होगा कि आचार्य द्विवेदी की पुस्तक समीक्षाओं का परिचयात्मक और संस्कृत पद्धति के अंतर्गत रखा जाए। नए शब्द चरित्र चर्चा, भाषा और व्याकरण, कालिदास की निरंकुशता पर विद्वानों की टिप्पणियाँ शास्त्रार्थ पद्धति पर लिखी गई हैं। इस पद्धति में तर्क और पांडित्य दोनों का आधार लिया जाता है। द्विवेदी जी ने सूक्ति पद्धति का प्रयोग बहुत कम किया है। श्रीधर पाठक की काश्मीर सुषमा और मैत्री शरणगुप्त की भारत भारती पर द्विवेदी जी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्हें प्रशंसात्मक सूक्तियों के रूप में लिया जा सकता है। खंडन पद्धति की आलोचना द्विवेदी जी को प्रिय नहीं थी। किसी रचना की कमियों की ओर दृढ़तापूर्वक अंगुली निर्देश करना खंडन नहीं है। हिंदी नवरत्न की जो समीक्षा द्विवेदी जी ने लिखी, उसे एक हद तक खंडन पद्धति की समीक्षा कहा जा सकता है। लोचन पद्धति वस्तुतः व्याख्यात्मक आलोचना का ही पूर्व रूप है। द्विवेदी जी की आदर्श आलोचना पद्धति यही थी। कवि के व्यक्तित्व कृतित्व को पूर्णतः हृदयंगम करके रचना में निहित सौंदर्य का विवेचन इस पद्धति की विशेषता है। द्विवेदी जी ने संस्कृत के महाकवियों का वैशिष्ट्य प्रकट करते समय रचना के पूरे संदर्भ को ध्यान में रखकर उसके सौंदर्य का स्पष्ट और स्वच्छ प्रकाशन किया है। द्विवेदी जी ने किरातार्जुनीय और रघुवंश की भूमिकाएं तथा मेघदूत रहस्य इसी शैली में लिखा है। आचार्य द्विवेदी की समीक्षा में विशेषतः हिंदी की रचनाओं की समीक्षा में नैतिक सामाजिक मूल्य दृष्टि का प्राधान्य है। वे सीधे और दो टूक शब्दों में उस रचना या समीक्षा कृति का विरोध करते हैं जो देश और समाज का हित साधना में असमर्थ है। उनके सामने मुख्य समस्या समाज को नई दिशा देने की है, युवकों के चरित्र निर्माण की है, नैतिक मूल्यों के प्रसार की है, पूरे समाज को शिक्षित करने की है, वैज्ञानिक जीवन दृष्टित्व आत्मसात करने की है, समाज में व्याप्त हीनता ग्रंथि को दूर करने की है। काव्य में प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान के औचित्य विवेचन और विभाव अनुभाव निदर्शन की नहीं। द्विवेदी जी साहित्य और मनुष्य में बहुत संबंध मानते हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के 13वें अधिवेशन के अवसर पर स्वागताध्यक्ष पद से दिए गए द्विवेदी जी के भाषण के आधार पर लिखा है, द्विवेदी जी का कथन है कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके आंकलन से बहुदर्शिता बढ़े, बुद्धि की तीव्रता प्राप्त हो, हृदय में एक प्रकार की संजीवनी शक्ति की धारा बहने लगे, मनोवेग परिष्कृत हो जाए और आत्मगौरव का उद्भावन हो। द्विवेदी जी समीक्षा कृति में अपने नए उद्देश्यों की तलाश करते थे। उनके लिए छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, गुण, दोष, वृत्ति, रीति आदि गौण तत्व थे, इसलिए उनकी कृतियों की समीक्षा में संरचना का विशेष विश्लेषण नहीं किया जाता। भारतेंदु युग में भी मात्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की समीक्षा में कृति की संरचना के विश्लेषण की प्रवृत्ति लक्षित होती है। शेष समीक्षकों ने सामाजिक उपयोगिता एवं नैतिक मूल्यों की दृष्टि से कृतियों के उत्कर्षापकर्ष का विवेचन किया है। आश्चर्य है कि द्विवेदी की समीक्षा का मूल्यांकन करते हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य भुला दिया जाता है कि उनके सामने हिंदी का कोई ऐसा कोई उत्कृष्ट लक्ष्य ग्रंथ नहीं था जिसकी चुनौती स्वीकार करके वे अपनी समीक्षा दृष्टि को समृद्ध करते। रीतिकालीन कवियों को वे नकार चुके थे। खड़ी बोली रचनाएं प्रयोग की स्थिति में थी, इसलिए भी उनकी समीक्षा या तो नैतिक मूल्य दृष्टि से लक्षित होने वाली कवियों को इशारा करके रह जाती है या प्रशंसात्मक सूक्तियों का रूप ले लेती है। संस्कृत कवियों की समीक्षा वे अवश्य एक आचार्य के रूप में साधिकार करते हैं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी कवियों या लेखकों के संबंध में कोई विस्तृत या सुनियोजित सांगोपांग समीक्षा नहीं लिखी। व्यवहारिक स्तर पर लिखी गई उनकी दो समीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, हिंदी नवरत्न की समीक्षा और आजकल के हिंदी कवि और कविता से लिखी शीर्षक से छायावादी कवियों की समीक्षा। ये दोनों ही समीक्षाएं आचार्य द्विवेदी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक आदर्श और परिष्कृत काव्य संसार के परिचायक हैं। वे व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित होकर ब्यौरे की भूलों को आधार बनाकर खंडन मंडन में प्रवृत्त नहीं हुए हैं। वस्तुतः विकृतियों के मूल्यांकन का निश्चित वैज्ञानिक आधार चाहते थे। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कवि को बड़ा किसी को छोटा प्रतिपादित करना उन्हें मान्य नहीं था। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कवियों का चयन नितांत व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया था। कवियों की श्रेष्ठता को लेकर उनके मन में विचित्र ऊहापोह की स्थिति बनी रही है। हिंदी नवरत्न की भूमिका में वे लिखते हैं, पहले हम मतिराम को भूषण से श्रेष्ठ कवि समझते थे, परंतु कालांतर में अपने इस विचार पर शंका होने लगी। हमने भूषण और मतिराम के एक एक छंद का तुलनात्मक अध्ययन किया। जब जान पड़ा कि मतिराम के प्रायः 10 या 12 कवित्व तो ऐसे रुचिकर हैं कि उनका सामना भूषण का कोई कवित्व कर ही नहीं सकता और उनके सामने देव के सिवा और किसी के ही कवित्व ठहर नहीं सकते, पर मतिराम के शेष पद्य भूषण के अनेक पद्यों के सामने ठहर नहीं सके। इस प्रकार मतिराम और भूषण की तुलना करके हमने भूषण को श्रेष्ठ पाया। इसी प्रकार भूषण को केशव से मिलाया तो भूषण के ही कवित्व में विशेष चमत्कार देख पड़ा। प्रथम तो हमें इस बात पर आश्चर्य सा हुआ क्योंकि हम पहले केशवदास को भूषण से बहुत अच्छा समझते थे। ज्यों ज्यों अधिक मिलाते गए त्यों त्यों हमारे दृष्टि में भूषण का ही चमत्कार चढ़ता गया। तब हमने इन्हें बिहारी लाल से मिलाया, पर उनका वीरत्न के सम्मुख भी उनके पद्य ठहर न सके। यह तुलना केवल पद्य पढ़कर ही नहीं की गई, वरन प्रत्येक पद्य को नंबर देकर मनोहर पद्यों की संख्या और प्रति सैकड़ा औसत लगाकर सब बातों का ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत कही गई थी। यह भी स्मरणीय कि पहले मिश्र बंधुओं ने कबीर को नवरत्न के अंतर्गत स्थान नहीं दिया था, बाद में उन्हें कबीर को भी नवरत्न में लेना ठीक जचा, किंतु किसी अन्य को निकाल डालना उचित न जानकर उन्होंने भूषण और मतिराम को त्रिपाठी बंधु नाम देकर एक कर दिया और कबीर को शामिल कर लिया। इस प्रकार कुल 10 कवियों को स्थान देकर भी उन्होंने नवरत्न नाम सार्थक रखा। इस समय जो हिंदी नवरत्न हमारे सामने उसमें कवियों का क्रम इस प्रकार है, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी भूषण, मतिराम, केशव, कबीर, चंद और भारतेंदु। मिश्र बंधुओं ने यह क्रम श्रेष्ठता के आधार पर निर्धारित किया है। प्रकट है कि इस क्रम निर्धारण का कोई वैज्ञानिक मूल्यगत आधार नहीं है। आचार्य द्विवेदी को इस पर आपत्ति थी। उन्होंने लिखा, यह कवि साधारण श्रेणी का है, वह नीच श्रेणी का, किसी कविता उससे उत्तम है उसकी उससे, यह अमुक श्रेणी का है, वह अमुक की, यह तो लेखक का कथन मात्र हुआ, यह कोई लक्षण नहीं, वे अपनी रुचि के अनुसार जिसका जैसा चाहे समझ सकते हैं। यदि किसी को रामायण से आह्लाद सा जचे तो वह उसे भी रत्न समझ सकता है। पर यदि वह यह चाहता है कि लोग भी उससे इस विषय में सहमत हो, तो उसे अपने मत की पुष्टि में कुछ कहना भी चाहिए। विश्व बंधुओं ने देव को तुलसी और सूर्य की श्रेणी में रखा था तथा बिहारी और मतिराम को नवरत्नों में स्थान दिया। त्रिवेदी जी इससे भी सहमत नहीं थे। उन्होंने लिखा, जिसने उच्च भावों का उद्बोधन नहीं किया, जिसने समाज, देश या धर्म को अपनी कविता द्वारा विशेष लाभ नहीं पहुंचाया, जिसने मानव चरित्र को उन्नत करने योग्य सामग्री से अपने काव्य को अलंकृत नहीं किया, वह भी यदि महाकवि या कविरत्न माना जा सकेगा तो प्रत्येक देश या प्रत्येक प्रांत में भी सैकड़ों महाकवि और नवरत्न निकल जाएंगे। यह हमेशा बंधु तथा गुण दोष निदर्शनी तुलनात्मक आलोचना में तल्लीन अन्य समीक्षकों से आचार्य द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि का अंतर साफ उभर आता है। द्विवेदी जी उस साहित्य को महत्वपूर्ण मानते थे जिसमें उच्च भावों का उद्बोधन हो, जिसमें समाज और देश हित की भावना निहित हो और जिसमें मानव चरित्र के उन्नयन की क्षमता हो। मूल दृष्टि का यह अंतर उन्हें उस युग में एक विशिष्ट समीक्षक और युग निर्माता साहित्यकार का स्थान प्रदान करता है। इस समीक्षा में आचार्य द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का भी संकेत मिलता है। उस समय तक हिंदी साहित्य का कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवश्य मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखकर इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया था, किंतु यह प्रयास एक उदार अंग्रेज शासक का था और इस प्रयास में उसकी औपनिवेशिक दृष्टि छिपी नहीं थी। आचार्य द्विवेदी निश्चित ही राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से अपने अतीत को देखना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि इतिहास लिखते समय कवियों के महत्व और मूल्य के आकलन में वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि का अनुसरण किया जाए। वे अपनी लंबी दोष निदर्शनी समीक्षा का औचित्य प्रमाणित करते हुए लिखते हैं, इसका एक कारण और भी है। लेखक महोदयों का एक पत्र अभी कुछ ही समय हुआ कितने ही समाचार पत्रों में निकला है, जिससे विदित हुआ कि आप लोग 5 वर्षों से हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा कोई 1000 पृष्ठ का इतिहास लिख रहे हैं। यह इतिहास समाप्त प्राय है, इसमें केवल कुछ आधुनिक कवियों लेखकों का निबंध लिखना बाकी है। इसी से अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार हमने संक्षेप में नवरत्न की त्रुटियां दिखाने का साहस किया। कारण कुछ भी रहा हो, हिंदी समीक्षा के इतिहास में हिंदी नवरत्न की इस विस्तृत समीक्षा का ऐतिहासिक महत्व है। इससे किसी भी कवि की श्रेष्ठता मनमाने ढंग से निर्दिष्ट और प्रतिपादित करने तथा रीति कवियों को अनावश्यक महत्व देने की परंपरा पर निश्चित रूप से अंकुश लगा। आचार्य द्विवेदी ने छायावादी के रूप में उभर रहे नवीन काव्य आंदोलन की भी समीक्षा की। इस आंदोलन में रहस्यवादिता प्रवृत्ति और आलंबन का मूर्तिकरण उन्हें विशेष रूप से खटकता था। आगे चलकर आचार्य शुक्ल ने भी मुख्यतः इन्हीं बातों को लेकर छायावाद की आलोचना की। डॉक्टर नंद किशोर नवल का यह कहना सही है कि द्विवेदी जी की आलोचना शुक्ल जी की आलोचना की पीठिका तैयार करती है। वस्तुतः शुक्ल का लोक मंगल के साधना का सिद्धांत भी द्विवेदी जी के समाज, देश और धर्म हित के सिद्धांत की सुविचारित प्रणति है। आचार्य द्विवेदी का मूल्यांकन मात्र रचनाओं कृतियों के समीक्षक के रूप में नहीं, पूरे युग की सृजनात्मक चेतना के प्रेरक, उन्नायक, विधायक एवं परिष्कारक के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने खड़ी बोली काव्य भाषा के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। खड़ी बोली का स्वीकार एक नवीन सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का स्वीकार था। काव्य भाषा और गद्य भाषा की एकता का समर्थन भी इसी चेतना का परिणाम था। काव्य विषयों के विचार में भी जीवन से समग्र प्राकृतिक एवं मानवीय उत्पादनों के स्वीकार के बाद भी रचनात्मक चेतना के खुलेपन एवं प्रसाद का द्योतक है, जिसके पीछे विज्ञान का नया आलोक कार्य कर रहा था। छंदों के प्रयोग में, रूढ़ियों के त्याग और रीति काव्य विरोध के मूल में भी स्थायी महत्व की व्यावहारिक समीक्षा न लिखी हो, भले ही उनके निबंध बातों के संग्रह मात्र हों, किंतु उनके लेखन में नवीन सामाजिक मूल्य दृष्टि कार्य कर रही थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आचार्य द्विवेदी को प्राचीन भारतीय विवेकवादी परंपरा का पोषक, स्वाधीन चेतना का समर्थक और हिंदी नव जागरण के तीसरे चरण का प्रतिष्ठापक प्रमाणित करके डॉक्टर रामलीला शर्मा ने उनके साथ न्याय ही किया। निराला ने आचार्य द्विवेदी के युग निर्माता व्यक्तित्व को काव्य की भाषा में प्रयुक्त करते हुए कहा है, खड़ी बोली की घट को साहित्य के विस्तृत प्रांगण में स्थापित कर आचार्य महेश प्रसाद द्विवेदी ने मंत्र पाठ द्वारा देश के नवयुवक को एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में आमंत्रित किया और इस घट में कविता की प्राण प्रतिष्ठा की। हिंदी साहित्य की वर्तमान धारा पूर्ण ज्ञान के महासागर की और जितना भी बढ़ती जाएगी लोग उतना ही उसके महत्व को समझेंगे। श्री पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी ने आचार्य द्विवेदी के युगव्यापी महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, मेघ की तरह उन्होंने विश्व की ज्ञान राशि को संचित कर और उसकी वर्षा कर समग्र साहित्य उद्यान को हरा भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्हीं की साधना का फल है। आचार्य द्विवेदी का समीक्षक व्यक्तित्व संस्तुतियों का मोहताज नहीं, वस्तुतः उनके महत्व के आकलन में दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है। आचार्य शुक्ल एक श्रेष्ठ निबंध लेखक और समर्थ आलोचक से जो अपेक्षा रखते थे, महर्षि प्रसाद द्विवेदी ही नहीं, उस युग का कोई भी अन्य समीक्षक उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। आचार्य शुक्ल आधुनिक शैली की आलोचना के लिए विस्तृत अध्ययन सूक्ष्म अन्वीक्षण बुद्धि और मर्म ग्राहिणी प्रज्ञा की अपेक्षा करते थे। निश्चय कृति विशेष या प्रवृत्ति विशेष में निहित काव्य सौंदर्य का विवेचन करने के लिए उपर्युक्त विशेषताएं अनिवार्य है, लेकिन यदि पूरी युग रचनाकर्म को नई दिशा देने के लिए वैचारिक आधार प्रस्तुत करना हो, रचनाओं को पति बधाए रूढ़ी जर्जर परपाटी से हटाकर नए पथ पर अग्रसर करना हो और पूरे युग के साहित्य प्रवाह को एक व्यवस्थित लोकोपयोगी दिशा देनी हो, तो वही करना होगा जो आचार्य द्विवेदी ने किया। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में, वे वस्तुतः एक लोक समीक्षक थे। वे विशिष्ट का विश्लेषण नहीं कर रहे थे, सामान्य को विशिष्ट दिशा में अग्रसर कर रहे थे। आचार्य द्विवेदी का मूल्यांकन इसी दृष्टि से होना चाहिए। आचार्य द्विवेदी के मूल्यांकन में एक बात और ध्यान देना आवश्यक है, उनकी समीक्षा दृष्टि निरंतर विकसित होती रही है। उन्होंने देश विदेश के अनेक विद्वानों का अध्ययन किया था। मराठी और बंगला साहित्य की उपलब्धियों पर वे बराबर निगाह रखते थे और हिंदी को उनके समक्ष लाने की चेष्टा करते थे। साहित्येतर विषयों का भी उनका अच्छा अध्ययन था। वे विश्वगति को ध्यान में रखकर साहित्य को नई दिशा देना चाहते थे। वे ज्ञान के साथ भाव का विकास करते हुए साहित्य में दोनों का सहसंचार करना चाहते थे। अब जब उनका संपूर्ण साहित्य हमारे सामने है, हमें उनके संपूर्ण प्रदेश का मूल्यांकन करना चाहिए। जिन शब्दों में कविवर पंत ने आचार्य द्विवेदी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की है, वे उनके महत्व का ठीक ठीक आकलन करने में समर्थ हैं। भारतेंदु का कर गए भारती का वीणा निर्माण, या अमर स्पर्श ने जिसका बहुविध स्वर संधान, निश्चय उसमें जगा आपने प्रथम स्वर्ण झंकार, अखिल देश की वीणा को दे दिया एक आकार, पंखहीन थी अहा कल्पना मूक कंठगत मान, शब्द शून्य थे भाव रुद्ध प्राणों के वंचित प्राण, सुख दुख की प्रिय कथा स्वप्न बंधी थे हृदयोद्गार, एक देश था सही एक था क्या वाणी व्यापार, वाग्मी आपने मूक देश को कर दिया फिर से वाचाल, रूप रंग से पूर्ण कर दिया और जीर्ण राष्ट्र कंकाल, शतकंठों से फूट आपके शतमुख गौरव गान, शत शत युग स्तंभों में ताने स्वर्णिम कीर्ति वितान, चिर स्मारक सा उठ युग युग में भारत का साहित्य, आ रहे आपके यश काय को करे सुरक्षित नित्य।